लेव व्यवस्था अध्याय 16। अध्याय 16 में हम प्रायश्चित के दिन की व्याख्या देखते हैं। प्रधान याजक भी महापवित्र स्थान में किसी भी समय नहीं जा सकता था। जब हारून के दो पुत्र यहोवा के सामने समीप जाकर मर गए, उसके बाद यहोवा ने मूसा से बातें की और यहोवा ने मूसा से कहा, अपने भाई हारून से कह कि संदूक के ऊपर के प्रायश्चित वाले ढकने के आगे बीच वाले पर्दे के अंदर पवित्र स्थान में हर समय ना प्रवेश करे, नहीं तो मर जाएगा, क्योंकि मैं प्रायश्चित वाले ढकने के ऊपर बादल में दिखाई दूंगा। और जब हारून पवित्र स्थान में प्रवेश करे, तब इस रीति से प्रवेश करे, अर्थात पाप बलि के लिए एक बछड़े को और होम बलि के लिए एक मेढ़े को लेकर आए। वो सनी के कपड़े का पवित्र अंग रखा और अपने तन पर सनी के कपड़े की जांगिया पहने हुए और सनी के कपड़े का कटिबंध और सनी के कपड़े की पगड़ी भी बांधे हुए प्रवेश करे। ये पवित्र वस्त्र है और वो जल से स्नान करके इन्हें पहने। लेव व्यवस्था 16:1-4 पद। वर्ष के बाकी समयों में दूसरे याजक बलि चढ़ाते थे, परंतु प्रायश्चित के दिन प्रधान याजक को सारी विधि पूरी करना होती थी। यदि हम उन पशुओं को गिने जिनका वो वध करता था, वे करीब 30 पशु होते थे जिनको वो बलि करता था, और उसे 5 बार नहाना भी होता था। इस दिन विशेष में वो प्रधान याजक के सुंदर वस्त्र अर्थात एपोद और नीला कटिबंध आदि नहीं पहनता था, परंतु इस दिन वो याजक के सादे कपड़े पहनता था। सबसे पहले वो स्वयं के लिए पाप बलि चढ़ाता था, अर्थात अपने पापों का प्रायश्चित करता था। फिर उसके बाद लोगों के पापों के लिए बलिदान चढ़ाता था। इस प्रकार हम देखते हैं कि ये सब विधियां यीशु मसीह के आगमन की प्रतीक्षा कर रही थी। अतः ये सभी बातें अति सुंदर प्रतीक थी। परंतु यहां एक ही अंतर है कि याजक अपने प्रायश्चित के लिए बलि चढ़ाता था, जो मसीह यीशु के लिए आवश्यक नहीं था। यीशु को पाप बलि चढ़ाने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि वो पाप रहित था। मसीह हमारा महायाजक है। उसने स्वर्ग में प्रवेश किया, जिसका नमूना पृथ्वी पर का मंडप था। बकरियों के लहू के द्वारा नहीं, परंतु अपने लहू के द्वारा। उसके लिए ये वार्षिक कार्य नहीं था जैसा महायाजक करता था, परंतु यीशु एक ही बार सदा के लिए बलि होकर पिता की दहनी ओर जा बैठा, जब तक कि उसके शत्रु उसके पैरों की चौकी न बन जाए। परंतु प्रायश्चित के दिन तक हारून के कार्य हमारे प्रधान याजक मसीह के समानांतर संकेतिक थे। उसने भीतर जाकर परमेश्वर के सन्मुख हमारे लिए बलि चढ़ाई। पुराने नियम की बलियों के बारे में चर्चा करते थे। पौलुस कुलुसियों के नाम पत्री में लिखता है, क्योंकि ये सब आने वाली बातों की छाया है, पर मूल वस्तुएं मसीह की है। कुलुसियों 2:17। ये सब चीजें मसीह की छाया थी, वही तो मूल है। मसीह इतिहास के दोनों भागों के मध्य खड़ा है, पुराने नियम के बलिदानों और पवित्र दिनों पर छाया डालता है। कुछ भी अधिक शक्तिशाली नहीं इस प्रायश्चित के दिन से बढ़कर। जब याजक ने बलि चढ़ाकर लोगों के लिए प्रायश्चित किया, जिसमें हम यीशु मसीह के कार्यों को देखते हैं, वहां 2 बकरियां लाई जाती थी और महायाजक हारून दोनों बकरियों को लेकर चिट्ठी डालकर एक परमेश्वर के लिए और दूसरी अजाजेल के लिए चुनता था। फिर वो इसराइलियों की मंडली के पास से पाप बलि के लिए 2 बकरे और होम बलि के लिए 1 मेढ़ा ले, और हारून उस पाप बलि के बछड़े को जो उसी के लिए होगा चढ़ाकर अपने और अपने घराने के लिए प्रायश्चित करे, और उन दोनों बकरों को लेकर मिलाप वाले तंबू के द्वार पर यहोवा के सामने खड़ा करें और हारून दोनों बकरों पर चिट्टियां डालें, एक चिट्ठी यहोवा के लिए और दूसरी अजाजेल के लिए हो, और जिस बकरे पर यहोवा के नाम की चिट्ठी निकले उसको हारून पाप बलि के लिए चढ़ाए, परंतु जिस बकरे पर अजाजेल के लिए चिट्ठी निकले वो यहोवा के सामने जीवता खड़ा किया जाए कि उसे प्रायश्चित किया जाए और वो अजाजेल के लिए जंगल में छोड़ा जाए, और हारून उस पाप बलि के बछड़े को जो उसी के लिए होगा समीप ले आए और उसको बलिदान करके अपने और अपने घराने के लिए प्रायश्चित करे, और जो वेदी यहोवा के सम्मुख है उस पर के जलते हुए कोयलों से भरे हुए धूपदान को लेकर और अपनी दोनों मुट्ठियों को फूटे हुए सुगंधित धूप से भरकर बीच वाले पर्दे के भीतर ले आकर तब वो बछड़े के लहू में से कुछ लेकर पूरब की ओर प्रायश्चित के ढकने के ऊपर अपनी उंगली से छिड़के और फिर उस लहू में से कुछ उंगली के द्वारा उस ढकने के सामने भी सात बार छिड़क दे। फिर वो उस पाप बलि के बकरे को जो साधारण जनता के लिए होगा बलिदान करके उसके लहू को बीच वाले पर्दे के भीतर ले आए, और जिस प्रकार बछड़े के लहू से उसने किया था ठीक वैसा ही वो बकरे के लहू से भी करे, अर्थात उसको प्रायश्चित के ढकने के ऊपर और उसके सामने छिड़के, और वो इसराइलियों की भांति भांति की अशुद्धता और अपराधों और उनके सब पापों के कारण पवित्र स्थान के लिए प्रायश्चित करे, और मिलाप वाला तंबू जो उनके संग उनकी भांति भांति की अशुद्धता के बीच रहता है उनके लिए भी वो वैसा ही करे। लेव व्यवस्था 16:5-12 पद और 14-16 पद। इस प्रायश्चित के दिन महायाजक बिना किसी सहायता के सब काम स्वयं करता था, जैसे मसीह ने स्वयं हमारे पापों को उठाया और हमारे स्थान पर दुख उठाया। महायाजक महापवित्र स्थान में वर्ष में एक बार प्रवेश करता था। महापवित्र स्थान में आने का अर्थ था परमेश्वर की उपस्थिति में आना। परमेश्वर वहां अपने दया आसन पर विराजमान होता था। इस प्रायश्चित के दिन वो महापवित्र स्थान में तीन बार प्रवेश करता था। पहले वो स्वयं के लिए पाप बलि चढ़ाने आता था, फिर लोगों के लिए पाप बलि के बछड़े के लहू को लेकर, और तीसरी बार बकरी के लहू के साथ लोगों की पाप बलि लेकर, ताकि परमेश्वर देश के पापों को ढांप दे। ये पाप के प्रति परमेश्वर की व्यवस्था है। आगे के अध्यायों में परमेश्वर लहू के महत्व को बताता है। अध्याय 17, लहू खाना वर्जित था, क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है और उसको मैंने तुम लोगों को वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है कि तुम्हारे प्राणों के लिए प्रायश्चित किया जाए, क्योंकि प्राण के कारण लहू ही से प्रायश्चित होता है। लेव व्यवस्था 17:11। क्योंकि प्राण के कारण लहू ही से प्रायश्चित होता है। मैंने बताया था कि आज भी यहूदियों में असमानता है, जबकि वे यौम किपूर अर्थात प्रायश्चित के दिन को वर्ष का सबसे पवित्र दिन मानते हैं। मैंने अनेक यहूदियों से सवाल किया कि वे कैसे पापों की क्षमा की आशा करते हैं। उन सबका एक ही उत्तर था कि प्रायश्चित के दिन वे बीते वर्ष के बारे में सोचते हैं और बुराइयों तथा अच्छाइयों का हिसाब लगाते हैं। उनका उद्देश्य ये होता है कि अच्छाइयों का बुराइयों से अधिक हो। यदि किसी दुष्ट यहूदी ने आपको परेशान किया है तो आप यौम किपूर से एक दिन पहले उसके पास जाएंगे, क्योंकि इस दिन वे यथासंभव प्रयास करके अपने बीते वर्ष की बुराइयों को समाप्त करना चाहते हैं। इसका कारण यह है कि अगले दिन यौम किपूर पर्व, जब वे अपने जीवन पर मनन करेंगे, तब वे बुराइयों को अच्छाइयों से अधिक ना पाएं। ये एक भ्रांति है, क्योंकि परमेश्वर ने इस दिन को अपने साथ उनके संबंधों को साधने के लिए ठहराया था। जो मार्ग परमेश्वर ने अपने संबंध के लिए स्थापित किया वो है लहू का बलिदान। लहू के द्वारा ही प्रायश्चित होता है। परमेश्वर ने व्यवस्था में स्पष्ट किया है, व्यवस्था के अनुसार प्रायः सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है और बिना लहू बहाए क्षमा नहीं होती। इब्रानियों 9:22 पद। पाप के द्वारा सदा मनुष्य परमेश्वर से अलग हो जाता है। व्यवस्था में एक भी शब्द ऐसा नहीं है जो बुरे कार्यों को भले कार्यों से संतुलित कर सके। परमेश्वर ने उन लोगों के साथ वाचा बांधी, वो वाचा जिससे वे उसके साथ संबंधित रहे, वो वाचा जिसके द्वारा वे उसके पास आ सके, जो वास्तव पशु के लहू बहाने के साथ थी, क्योंकि लहू के द्वारा ही प्रायश्चित किया जाना है। एक बात जो व्यवस्था सिद्ध करती है वो ये नहीं है कि परमेश्वर के पास पहुंचना कैसा कठिन है, परंतु ये कि एक आम मनुष्य के लिए परमेश्वर कितना दूर है। व्यवस्था के अंतर्गत परमेश्वर निकट आना आसान नहीं था। एक ही मनुष्य था जो परमेश्वर के निकट जा सकता था, वो मनुष्य था महायाजक, परंतु वर्ष में एक बार जा सकता था, बशर्त वो पाप बलिदान चढ़ाए और संपूर्ण शोधन करे। अतः उनकी व्यवस्था स्वयं ही दर्शाती थी कि परमेश्वर के पास पहुंचना संभव नहीं। मैंने उस यहूदी को इस विषय पर चुनौती दी तो उसके पास कोई उत्तर नहीं था। उसने मुझे अपने रबियों द्वारा सिखाई गई निरार्थक बातें कहीं जिनका कोई आत्मिक आधार नहीं है। पुराने नियम में हमें ऐसा परमेश्वर नहीं दिखता जिसके पास कोई भी कभी भी पहुंच सके। देखें 16वें अध्याय के आरंभ में क्या लिखा है, जब हारून के दो पुत्र यहोवा के सामने समीप जाकर मर गए, उसके बाद यहोवा ने मूसा से बातें की और यहोवा ने मूसा से कहा, अपने भाई हारून से कह कि संदूक के ऊपर के प्रायश्चित वाले ढकने के आगे पवित्र स्थान में हर समय ना प्रवेश करे। तुम किसी भी समय यहां नहीं आ सकते, तुम वर्ष में एक बार ही आ सकते हो, और वे भी सारी विधियां जो परमेश्वर ने ठहराई है पूरी करने के बाद। यदि परमेश्वर के समीप पहुंचना कठिन था, तब यहूदियों को ये विचार कैसे आया कि आज परमेश्वर के समीप जाना सहज है। यदि उसके समीप लहू के बलिदान के द्वारा ही पहुंचा जा सकता है, तो वे ये कैसे सोच सकते हैं कि वो अपने कार्यों के द्वारा वहां पहुंच सकते हैं। जब भी परमेश्वर का वचन कहता है हमारे सारे कार्य परमेश्वर की नजर में मैले चित्रों के समान है, पुराने नियम में परमेश्वर के समीप पहुंचने की कोई भी कोशिश जो परमेश्वर के ठहराए हुए तरीके से भिन्न है परमेश्वर के समक्ष घृणित है, इसलिए वे अपने ही धर्म ग्रंथ में सच्चे नहीं है। परमेश्वर के मार्ग को त्याग कर उन्होंने अपनी धार्मिकता अपने कामों के द्वारा स्थापित करनी चाहिए। पौलुस कहता है जिनको व्यवस्था दी गई वे व्यवस्था के द्वारा धार्मिकता को नहीं पहुंचते, क्योंकि परमेश्वर की व्यवस्था से हटकर वे अपने कार्यों के द्वारा अब धर्मी ठहरना चाहते हैं। पौलुस रोमियो को परमेश्वर के निकट आने के विषय में उनकी भ्रांति से अवगत कराता है। हमारे पास परमेश्वर तक पहुंचने का मार्ग है जो इसराइलियों के पास नहीं है। उनके पास पाप की बलि नहीं है, उनके पास मंदिर नहीं है, उनका कोई महायाजक नहीं है, परंतु हम यीशु मसीह के द्वारा आज परमेश्वर तक पहुंच सकते हैं। हमारा महान महायाजक जो हमारे लिए स्वर्गीय स्थानों में हाथ के बनाए हुए पृथ्वी के मंडप में नहीं, परंतु परमेश्वर के सन्मुख स्वर्गीय स्थानों में प्रवेश कर गया। पृथ्वी पर का मंदिर तो मात्र एक नमूना था, जहां मसीह प्रवेश कर गया और उसका प्रवेश करना हमारे लिए बलिदान था। फिर उसने द्वार खोलकर कहा, बालकों तुम सब अंदर आ जाओ। वे संतान जो विश्वास के द्वारा मसीह यीशु तथा नई वाचा के उसके लहू में भरोसा और आस्था रखते हैं, उनके पास मसीह यीशु के लहू के द्वारा परमेश्वर के निकट आने की स्वतंत्रता है। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांधकर चले कि हम पर दया हो। इब्रानियों 4:16। कैसा उत्तम वरदान जो मसीह यीशु के द्वारा हमने पाया है। अतः हम भी लहू के बलिदान के बिना परमेश्वर के पास नहीं आते हैं, क्योंकि लहू के द्वारा ही प्रायश्चित होता है। बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं होती। इसी कारण यीशु ने अपना लहू बहाया। इसी कारण परमेश्वर ने अपनी प्रजा के मन मस्तिष्क में लहू के प्रति उच्च आस्था स्थापित की और उस पर बार बार बल भी दिया। लहू चाहे पशु का ही ना हो, वो उन्हें लहू का उच्च सम्मान करना सिखाना चाहता था कि जब यीशु का लहू बहे तो वे असीम श्रद्धा से उसे माने। इब्रानियों की पुस्तक में हमें बताया गया है, जो मूसा की व्यवस्था को तुच्छ जानता है वो दो या तीन गवाहों के सामने पत्थरवाह करके बिना दया के मार डाला जाता है, तो वो कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांव से रौंदा और वाचा के लहू को, जिसके द्वारा वो पवित्र ठहराया गया था, अपवित्र जाना है और अनुग्रह की आत्मा का अपमान किया। इब्रानियों 10:28-29 पद। परमेश्वर चाहता है कि हम लहू का सम्मान करें, चाहे वो पशु का ही क्यों न हो। तो यीशु मसीह के लहू के प्रति वो हमसे कैसा आदर सम्मान की अपेक्षा करेगा। मैं थरथराता हूं जब लोग मसीह यीशु के लहू के बारे में निंदाजनक बातें करते हैं, जैसे मसीह धर्म एक खूनी धर्म है। मैं थरथराता हूं जब लोग वॉल्टेयर की तरह कहते हैं, मसीह का लहू और सुअर के लहू में कोई अंतर नहीं है। मैं ऐसी निंदा से थरथराता हूं। परमेश्वर चाहता है कि यीशु मसीह के लहू को उच्चतम आदर मिले, जो हमारे पापों की क्षमा के लिए बहाया गया। परंतु महिमामय बात यीशु मसीह और उसके हमारे पापों के लिए बलिदान में थी कि वो एक बार ही चढ़ाया गया, जिसने सबके पापों को धो दिया। हमें पाप बलि चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। उसका बलिदान सबके लिए बहुत था और उसने हमें एक ऐसा मार्ग उपलब्ध करा दिया जिसके द्वारा परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करता है। परंतु मैं आपको बता देना चाहता हूं कि धर्मशास्त्र में और कोई प्रावधान नहीं किया गया है जिसके द्वारा परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करे। कोई और मार्ग नहीं है जिसके द्वारा आप पापों में रहकर क्षमा पाए बिना परमेश्वर की संगति कर पाए। आपके पापों के लिए कुछ तो किया जाना था। परमेश्वर पवित्र है, उसकी उपस्थिति में पाप नहीं आ सकता। अतः आपको परमेश्वर के साथ एक होने के लिए, उसके साथ संगति करने के लिए, आपके पापों के लिए कुछ किया जाना आवश्यक है। इसलिए यीशु मसीह के बिना वास्तव में कोई मनुष्य परमेश्वर के साथ संगति नहीं कर सकता। क्रूस की कथा नष्ट होने वालों के लिए मूर्खता, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर का सामर्थ्य है, जिसके द्वारा मैं अपने पापों से शुद्ध हुआ और अब मैं यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के पास आ सकता हूं। इसलिए अध्याय 16 महत्वपूर्ण है, जहां हम देखते हैं हारून महायाजक अंदर जाकर लहू छिड़कता या दया के सिंहासन के सन्मुख पवित्र स्थान में इसराइल की अशुद्धता के लिए प्रायश्चित करता था, जो बैल के लहू से होता था और फिर बकरियों के लहू से। दो बकरियां होती थी, एक प्रभु के लिए पाप बलि चढ़ाने के लिए, परंतु दूसरी अजाजेल के लिए, जो यीशु मसीह के दोहरे उद्देश्य को दर्शाता है। यीशु केवल तुम्हारे पापों की क्षमा ही प्रदान नहीं करता, परंतु वो पापों पर सामर्थ भी देता है कि आप पापों से अलग रहो। ये दूसरी बकरी अजाजेल के लिए पहली बकरी जिस पर चिट्ठी निकली थी बलि करके चढ़ाने के बाद वे दूसरी बकरी के सिर पर हाथ रखता है और देश के सारे पापों को मानकर उस पर डालता था। फिर याजक इस बकरी को छावनी के बाहर निकाल देता था, वो जंगल में भाग जाती थी। यहां पर दोष भोगी बकरा पापों के दूर किए जाने का प्रतीक था। कई वर्ष बीत जाने के बाद यरूशलेम के मंदिर की स्थापित हो जाने तक इस संस्कार के संबंध में एक बड़ा समारोह विकसित हो गया था। अजाजेल का बकरा छोड़ने का स्थान निश्चित कर दिया गया था। कुछ लोग जंगल में जगह जगह खड़े हो जाते थे। याजक बकरे को लेकर निकलता था और लोग मंदिर के शिखर पर खड़े रहकर उसकी प्रतीक्षा करते थे कि वो लौटे। याजक अजाजेल के बकरे को लेकर छोड़ने के लिए जंगल में जाता था। वो भागता हुआ जंगल में जाकर लुप्त हो जाता था। तब याजक जैतून के पहाड़ पर खड़े व्यक्ति को संकेत देता और वो व्यक्ति अपने पीछे वाले को संकेत देता, वो अपने पीछे वाले को, और इस प्रकार शीघ्र ही संकेत मंदिर पहुंच जाता कि बकरा चला गया, अर्थात पाप चले गए। फिर लोगों में बड़ा आनंद मनाया जाता, स्तुति गान गाए जाते और परमेश्वर का महिमावान किया जाता कि पाप धारक बकरा चला गया। मैं उस महान आनंद के बारे में सोचता हूं जब मुझे ये बोध होता है कि हमारे पाप धुल गए, मसीह उन्हें अपने ऊपर लेकर चला गया और वो हमें पापों पर विजय एवं सामर्थ्य प्रदान करता है। इस प्रकार प्रायश्चित का ये दिन यहूदी कैलेंडर में सबसे बड़े महत्व का है। इस पर ध्यान देना और मसीह यीशु से इसकी तुलना करना उत्तम ही है। और ये तुम्हारे लिए सदा की विधि होगी कि इसराइलियों के लिए प्रतिवर्ष एक बार तुम्हारे सारे पापों के लिए प्रायश्चित किया जाए। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार जो उसने मूसा को दी थी हारून ने किया। लेव व्यवस्था 16:34।